ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते चैतन्यचन्द्राय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासम् ततो जये मौदीरये। श्रीगुरुवे गौरचन्द्राय श्रीराधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। आनन्दलीला मायाविग्रहाय हेमाङ्गदिव्यं शचीसुन्दराय तस्मै महाप्रेम रस प्रदाय। चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। भावराधिकमाधुरी आस्वादन सुखकाज जय श्री कृष्ण चैतन्य जय कलि प्रगटे प्रजरा। हरे कृष्णा। चैतन्य चरितामृत लीला कथा प्रेमी श्रोताओं को सादर वंदन। चैतन्य रस प्रेम प्रवाह में हम लोग सतत 6 दिनों से अवगाहन कर रहे हैं। भगवान गौरांग की ये मधुर लीलाएं, इनका श्रवण कीर्तन हमें कृष्ण प्रेम की ओर ले जाता है। शास्त्र और संत कहते हैं कि यह मनुष्य जीवन भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रेम प्राप्त करने के लिए मिला है। लेकिन दुर्भाग्यवश भगवान की बहिरंगा माया प्रकृति के अधीन होकर विषय भोग में व्यस्त होकर जीव लख 84 की ओर गति करता है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं ऐसे ब्रह्मांड में लख 84 में भ्रमण करने वाले लाखों करोड़ों अनंत जीव है, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान। लेकिन उनमें से कोई कोई सौभाग्यशाली जीवात्मा होता है जिन्हें भगवान की भक्तों की संगति प्राप्त होती है। विवेक चूड़ामणि में आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम और महापुरुष संग संश्रयम एतत्त्रयम् दुर्लभम। शिल प्रभुपाद की ये अहेतु की दया है कि इस्कान के माध्यम से कई करोड़ों जीवों को ये कृष्ण प्रेम भक्ति का सागर प्राप्त हुआ। अब हमारा कर्तव्य बनता है कि हम स्वयं भक्ति करें, अर्थात अपना जन्म सार्थक करें और फिर इसी कृष्ण भावनामृत का, इस हरे कृष्ण आंदोलन का प्रचार करें। जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। और भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, जो इस दिव्य भक्ति ज्ञान का प्रचार करता है उनसे प्रिय न मुझे कोई है, न हुआ है न होगा। त्रिकाल वाचा बोलते हैं भगवान भूत भविष्य वर्तमान में, न तस्मात मनुष्येषु कश्चित् मे प्रियकृतम्। इसीलिए भगवान श्री राधा गिरिधारी के चरणों में प्रेम प्राप्त करके उनके प्रिय बनना हम चाहते हैं तो स्वयं हमें शुद्ध भक्ति करना है और इस भक्ति ज्ञान गंगा का हमें प्रचार करना है। और ऐसा जो करता है वो पृथ्वी का सिंगार है। ऐसा वैष्णव जब पृथ्वी पर चलता है तो भगवती पृथ्वी देवी अपने आप को धनी मानती है कि धन्य है। पृथ्वी कहती है कि ये पर्वतों का भार मुझे भार नहीं लगता, लेकिन जो भजन नहीं करता ऐसा व्यक्ति मेरे पर भार है। भक्तों, कृष्ण भक्ति करके इस पृथ्वी का आभूषण बनिए, भार नहीं। और इसी विज्ञान को श्रील प्रभुपाद जी ने श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवत आदि शास्त्रों के आधार में अपने प्रवचन तात्पर्यों में मानव समाज को प्रदान किया है। बस इसी से हमें लाभान्वित होकर अपने जीवन को कृष्ण भक्ति की सुगंध से वैष्णव सदाचार रूपी संस्कारों से सजाना है। और ऐसा जो करता है उसका जीवन सार्थक है। ये अंतिम दिन का मैसेज है जो हम शुरुआत में ही दे रहे हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु जी के चरणों में रामानंद राय ने कहा, राय कहे दास्य प्रेम भक्ति सर्व साध्य सार, भगवान का दास बन जाना, उसकी भक्ति करना, यही सार है। इस पर बहुत विवेचना हुई। वैष्णव कहते हैं न जन्म कर्म वैष्णवानाम विद्यते, एक बार आप भगवान के दास अर्थात वैष्णव बन गए तो फिर जन्म कर्म से छूट जाएंगे, क्योंकि विष्णु अनुचरत्वम ही मोक्ष आहु मनीषिणा। विद्वानों का कहना है कि भगवान का अनुचर, जैसे कल उस श्लोक में अनुचर शब्द आया था यमुनाचार्य जी के श्लोक में, अगर कोई वैष्णव बन जाता है विष्णुदास के रूप में, अपनी साधारण जो वैधानिक वास्तविक स्थिति है उसे मान लेता है, जान लेता है, तो मोक्ष हो गया उसका। इसी को रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में कहा, यस्य हरेर दास्य कर्मणा मनसा गिरा निखिलापि अवस्थासु जीवन मुक्त चोच्यते। मन से, वचन से और कर्म से, मनसा कर्मणा गिरा, गिरा मतलब वाचा, निखिलापि अवस्थासु कहीं भी रहे, मीरा रोड रहे, दहिसर, बंबई, दिल्ली, कहीं रहे, लेकिन सभी अवस्थाओं में, क्या कोई भी क्षेत्र में हो, किसी भी व्यवसाय में हो, किसी भी व्यवहार में हो, कोई भी वर्ण या कोई भी आश्रम में हो, लेकिन अपने आत्म स्वरूप में वो स्थित है कि अहम कृष्णस्य दासो अस्मि, वो जीते जी मुक्त है। हमारे गुजराती में एक भक्त ने कहा है कि जीवन थी मोक्ष मांगे तू, पर जीवन ने मोक्ष मानू हूं। तो जीवन से मोक्ष चाहता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष के फेरे में पड़ा है। अरे एक बार गिरधारी के दरबार में दंडवत करके किसी संत के चरणों में बैठ के देख, और उस चरणों के बैठने में कथा चालू होगी जो नींद आएगी तुझे, ऐसा सुख तुझे तेरे एसी हॉल में भी नहीं मिलेगा। और जागने पर कब आंख खुलेगी, जब महाप्रसाद का बेल बजेगा। तूने अभी चखा नहीं है इस रस को, जीतेगी मोक्ष हो जाएगा। वो रसगुल्ला और चटनी में डाला हुआ जब वो ढोकला पेट में जाता है, ऐसे ही मुक्त हो जाते हैं, मोक्ष लेने की जरूरत ही नहीं। ये भक्तिविनोद ठाकुर ने गाया, प्रसाद सेवा करीते होय सकल प्रपंच जाय, शुद्ध भगत चरण रेणु भजन अनुकूल। बस शुद्ध भक्तों के चरणों में बैठो, भगत सेवा परम सिद्धि प्रेम लतिकार। प्रभु कहे ये हो होय, ये तो है, इसके आगे कहिए साख्य प्रेम सर्वसाध्य सार, तो इससे आगे तो भगवान का सखा बन जाना है, क्योंकि उसमें भगवान और नजदीक से प्राप्त होते हैं, अपनापन और प्राप्त होता है। भगवान अपने सखाओं के बीच में खेलते नहीं, खिलते हैं। अगर हमारा भाषा समझ में आपको आ रहा है, खेलना एक अलग होता है, लेकिन कैसे ना अपनों के मित्रों के बीच कैसे, गुजराती में कैसे खिली गयो, मतलब कमल जैसे खिलता है, ऐसे भगवान अपने सखाओं के बीच खिलते हैं और अपना माधुर्य रस बढ़ाते हैं। जाके गुण अमित अति निगम न पावत छोर, जिस भगवान श्री कृष्ण के गुण इतने अनंत है, अनलिमिटेड क्वालिटी, द ओशन ऑफ क्वालिटी, भगवान सारे सदगुणों के समुद्र है। जा से जाके गुण अमित अति निगम आगम न पावत छोर, छोर मतलब किनारा नहीं पाते वो लोग, नेती करके थक जाते हैं, और सोई प्रभु खेले ग्वाल बाल संग प्रेम भक्ति की डोर। लेकिन प्रेम भक्ति के वश होकर वही भगवान खेलते हैं सखाओं के साथ। हरि विरंची को जनक, ब्रह्मा और शिव का भी जो बाप है, गीता में भगवान ने कहा रुद्राणाम शंकरो अस्मि, रुद्रों में मैं शंकर हूं। तो अर्जुन ने कहा प्रभु जी ये ऑडियो थोड़ा वीडियो हो सकता है, तो भगवान ने विश्व रूप में दिखाया कि शंकर जी उससे निकल रहे हैं, जिसका भी बैंड बज रहा है ना उसके पिताजी की बात हो रही है। है तो है बाप, क्या मत परंतर नान्यम किस्तित अस्ति धनंजय, अर्जुन मेरे से परम कोई नहीं है। इस श्लोक है भगवत गीता का सातवें अध्याय का सातवां, सत्य पे सत्ता, याद रखिएगा ये श्लोक, सातवें अध्याय का सातवां श्लोक, जिसमें कृष्ण कहते हैं मत परंतरम नान्य, और कुरुक्षेत्र में बोल रहे हैं, मैदान में बोल रहे हैं, कोई है तो आए, मत परंतरम अन्य, हे धनंजय कोई नहीं है मेरे से परे, मैं हूं सबका आदि। क्या वीरता से बोलते द्वारकाधीश, और हरि विरंची को जनक, और जगत गुरु की ख्यात, और पूरी दुनिया कृष्ण को क्या कहती है, जगत गुरु, ताके गुरु ग्वारिया, और उनके गुरु कौन बने, ये गाय बकरी चराने वाले ये सखा लो, बोले तू हमारा चेला है, हाँ मैं तुम्हारे गुरु, क्यों, सख्य भक्ति के नाम, सखा है ना, दोस्त तो कुछ भी कर सकता है। प्रभु कहे एहो उत्तम आगे कहो, और ये तो बड़ी बढ़िया बात बताई आपने, इससे आगे बताओ। राय कहे वात्सल्य प्रेम भक्ति सर्व साध्य सार। यशोदा नंद बन के कृष्ण को गोदी में खिलाना, उसको खिलाना पिलाना नहलाना, उनकी मधुर मुस्कान सुनना, उनकी आंखों में काजल लगाना और उसके सिंगार करके जब घुटन घुटवन भगवान चले या माखन के लिए ललचाए या डर के मारे साड़ी के पल्लू में छुप जाए, वो जो रस है वो सर्वश्रेष्ठ रस है। माता यशोदा सिंगार करती थी लाला का और सिंगार करके कन्हैया के मुख चंद्र पे कहीं नजर ना लग जाए, इसलिए माता काला टीका लगाती थी। उसको क्या मालूम पूरी दुनिया को नजर ये लगाता है, कौन देखे कन्हैया तेरी आंखों से आंखें मिलाने का साहस नहीं होता, क्योंकि हमने सुना है कि कन्हैया नजरों से दिल चुरा लेता है, इसलिए आपके सामने ठीक देख नहीं पाते, क्योंकि आपको देख लेंगे तो किसी को देखने लायक रहते नहीं। लेकिन माता का तो भाव है कि भाई इसकी नजर, इसको कहीं नजर न लग जाए। नजर न लागे मारा श्याम सुंदर ने, टपका करी दो गाल मा। माता सची भी करती थी, सुंदर लाला सची रिदुला, पिता पीताम्बर पहना के, नूपुर पहना के, शीरे चूड़ा दरसी बाले। माता यशोदा जैसे भगवान कृष्ण का श्रृंगार करती, ऐसे माता सची भी काले घुंघराले हमारे निमाई के बालों को सहलाती थी, उसमें चूड़ा लगाती, और जैसे ही तैयार होता था तो सची आंगन में निमाई संकीर्तन करते थे। ये रूप माधुरी, ये वात्सल्य रस मूर्ति प्राप्त हुआ, ऐसा प्राप्त करने वाला सौभाग्यशाली। इसलिए गाते हैं कि धन्य है यशोदा तेरे भाग्य को, कि पूरे विश्व ब्रह्मांड का जो ये पालक है तेरे गोद में बालक बनके खेलता है, और इसीलिए तेरे तेरे चरणों में शिव ब्रह्मा आके दंडवत करते हैं। आप सबने सुना होगा भागवत जी में टीकाओं में वर्णन आया है, और कभी नंदगांव में आप जाओ तो जानते हैं नंदगांव पर्वत किस पर बना है, भगवान शिव ही नंदीश्वर पर्वत के रूप में है, क्योंकि शिव जी चाहते थे कि जिस प्रभु कृष्ण का मैं कीर्तन करता हूँ, कथा सुनता हूँ कैलाश में, वो नंदनंदन भूतल पर वृंदावन धाम प्रकट करके लीला करेंगे, तो हमारी भी सेवा होनी चाहिए, और इसलिए शिव जी स्वयं पर्वत के रूप में बन गए, ताकि नंदलाला के चरण हमारे देह पर पड़े। जिस चरणों से निकली गंगा लेते हैं सर पर, वही चरण साक्षात क्यों न ले। और जब भगवान ने मनोरथ पूरा किया तो पूर्ण रूप में प्रकट हुए, तो शिव जी कैलाश छोड़कर आए दर्शन के लिए, लेकिन द्वार पर आकर माता यशोदा से प्रार्थना करनी पड़ती है कि हे मैया तेरे लाला को दर्शन मिलेगो। अरे बाबा तोहे डर, तोहे देख के मोहे डर लागे, मारो छोटो सो लाला तोहे दर्शन ना करावी क्यों, तुम्हें मैं दर्शन नहीं करा सकती, ए सखी इनको कुछ दे दो, आलू पूड़ी रबड़ी सब्जी जो भी चाहिए ले जाओ। बोले ये मैं भूखा नहीं हूं, मैं तो तेरे लाला के दर्शन का भूखा हूं। यशोदा ने कहा योगीराज ये नहीं चाहिए तुमको, ए सखी हमारे खजाने में से जो रत्न है ना, मोती जवाहरात सोना चांदी थाल सजा के लाओ, ये जोगी क्यों दे दो। सखी थाल सजा के लाई, रत्न जड़ित असली गोल्ड डायमंड, सिंथेटिक नहीं असली। लो बोले बाबा, बोले इससे चाहिए इससे बढ़िया मैं तुझे देता हूं, मैं इसके लिए नहीं आया, मैं तो तेरे गिरधारी का दर्शन करने के लिए आया। बोले वो नहीं हो सकता, क्षमा करो नहीं करने दिया। देखो शिव जी को क्या जबरदस्ती नहीं चलती, एक त्रिनेत्र खोले ना तांडव करके विश्व फूंक दे जला दे, लेकिन वे नटराज भी जब नटवर का दर्शन करना हुआ तो दादागिरी नहीं चलेगी मैया के आगे, झुकना पड़ा। मैया ने कहा चाहे प्रणाम करो चाहे रोष करो, दर्शन तो नहीं दे गए मतलब नहीं देंगे बस, तो शिव जी चले गए। लेकिन कैलाश जाने को मन नहीं होता, कन्हैया को देखे बिना चैन कहां, जा ही नहीं रहे थे, हमारी तरह नहीं थे, चलो मंदिर बंद है तो जलसा अभी नेक्स्ट संडे छुट्टी काम हो गया, इंतजार करेंगे आशा लगा कर बैठे, इसलिए आज भी आशीश्वर महादेव देर कदम के पास नंदगांव में विराजमान, और कन्हैया रास खेलते हैं तो गोपीश्वर बन के आते हैं। भगवान शिव ने कैलाश में गमतू न, उसको वृंदावन प्यारा लगता है क्योंकि जहां कन्हैया है कौन छोड़ना चाहेगा उसको। और मैं ये कह रहा हूं कि माता यशोदा के सामने शिव जी को भी प्रणाम करना पड़ता है, लक्ष्मी को भी झुकना पड़ता है, सारी देवियां यशोदा के सामने झुकते हैं क्योंकि अखिल ब्रह्मांड अधिपति अनंत कोटि साम्राज्य के जो एकमात्र सम्राट है वे आदि पुरुष जिनको प्रणाम करते हो उसको क्यों नहीं पूरी दुनिया प्रणाम करेगी। तब रामानंद राय के सामने भगवान चैतन्य ने कहा, लगाइए 79 नंबर श्लोक जहां हमने छोड़ा था, प्रभु कहे हो बाह्य एहो उत्तम आगे कह आर राय कहे कांता प्रेम सर्व साध्य सार। प्रभु ने कहा कि कांता भगवान श्री कृष्ण को प्रिया बनके उसकी प्रियतमा बनके प्रेम करना ये सारे साध्यों का सार है। और कोई भी बात बोलो, प्रमाण से बोलो, श्लोक देकर, शास्त्रों से, कोटेशन से बोलो। तब राय ने कोटेशन दिया भगवत श्रीमद् भागवतम के एक श्लोक का, नायम श्रीयोंग नितांतरे प्रसाद स्वयोषिता नलिन गंध रुचा कुतोन्या रासोत्सव भुज दंड गृहीत दंड कंठ गृहीत कंठ लब्ध्वाशिष यौदगा व्रज सुंदरीणा। ये श्लोक उद्धव जी कहते हैं, दसवें स्कंद में 47 नंबर चैप्टर जिसमें भ्रमर गीत आया है और उस गोपियों के प्रेम भ्रमर गीत से सुनकर उद्धव जी प्रेम से पिघल गए। और तब उद्धव जी कहते हैं, नायम श्रीयो अंग उ नितांतरते प्रसाद ना अयम नित अंतरे प्रसादम। ये जो अत्यंत सर्वश्रेष्ठ प्रेम प्रसाद है श्रीय अंग जो भगवान की अर्धांगिनी है श्रीय अर्थात लक्ष्मी जी न एव वो भी प्राप्त न कर पाई, तो फिर वो अगर प्राप्त नहीं कर पाई तो स्वयो सीता नली न गंध रुचा कुतोन्या। अगर लक्ष्मी जी को भी जो भगवान की अर्धांगिनी या उसकी स्वरूप शक्ति का विलास है, सौभाग्य की अधिष्ठात्री है, उनको भी ये प्रसाद नहीं मिला तो फिर कुतो अन्य, तो फिर दूसरी नारियों को तो चांस ही नहीं है क्योंकि दूसरी सब तो उसके नीचे ही रह जाएगी ना। आप कहोगे स्वर्ग की देवी, उद्धव जी कहते मैं स्वर्ग ही पढ़ने गया था, सब देवियों को देखा हूं। स्वयो सीता नली नगन रुचा कुतोन्या। अरे स्वर्ग की देवियों में, स्वर्ग की अप्सराओं में, स्वर्ग की नारियों में स्वयोषिता मतलब स्वर्ग की नारी, स्वर्ग की योषित मतलब स्त्री, उसमें क्या 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 विशेषता है? उस स्वर्ग की सुंदरियों में सब में एक विशेषता है कि उनके शरीर से कमल की सुगंध आती है बिना अत्तर लगाए, क्योंकि स्वर्ग की नारियों में कभी पसीना आता ही नहीं, कभी दुर्गंध आता ही नहीं, उनके शरीर से मल मूत्र निकलता ही नहीं। कितना अच्छी फैसिलिटी है वहां पे। स्वर्ग की नारियों के विषय में लिखा है कि वहां श्यामा स्त्रिया है जो गर्मी में उसका शरीर ठंडा हो जाता है, उसके पति को एसी खरीदना नहीं पड़ता, और ठंडी में उसका शरीर नेचुरल हीट हो जाता है, और कितना जला दे उतना नहीं, जितना चाहिए उतना वातानुकूल बॉडी है उसका। अब भागवत में लिखा है ये, हम घर की बात नहीं बोलते, और आपको अनुभव नहीं होता नहीं मानना तो जाओ स्वर्ग, स्वर्गवासी बन जाओ। अगर व्यास के वचन पर विश्वास नहीं तो खुद ट्राई करो, कुछ बातें भगवान व्यास की भगवत गीता में से कृष्ण की हमें तुरंत मान लेनी चाहिए, उसका अनुभव या उसका क्या कहते हैं एक्सपेरिमेंट, उसका प्रैक्टिकली करने का बहुत बुद्धि नहीं रखना चाहिए। मान लीजिए संसार में कहीं पर 400-500 वोल्ट का करंट जा रहा है और सरकार ने वहां बोर्ड बना के लाल कलर किया और उसके ऊपर लिखा डोंट टच डेंजर, तो फिर आप कहोगे अरे हम नहीं मानेंगे, ट्राई करो छू के देखो, रिपोर्ट देने भी नहीं रहोगे, मान लेते हो कि नहीं? तब ये मानते हो जबकि कभी कभी उसमें करंट नहीं होता। तो भगवान वेदव्यास के वचन पर अश्रद्धा भगवान श्री कृष्ण गीता में है, कहते हैं अश्रद्धया विनश्यति, विनाश को प्राप्त करो।
स्वयो सीता नलिन गंध रुचा कुतोन्या,
किस प्रसाद को भाई लक्ष्मी नहीं पाई, और लक्ष्मी को नहीं मिला तो स्वर्ग की नारियों को तो चांस ही नहीं है, और स्वर्ग की नारियों को चांस नहीं है तब तो पृथ्वी में मीरा रोड वालियों को तो बात ही मत पूछो, उनका तो नंबर ही नहीं लगेगा। जब स्वर्ग की नारियों का चांस नहीं है तो सूरत मीरा रोड बॉम्बे वाले का तो भाव ही नहीं पूछने का। तो भाई कौन सा प्रसाद की बात कर रहे हो?
रासोत्सवस्य भुजदंड गृहीत कंठ लब्ध्वा शिशाय उरुगा व्रजवल्लवीना।
ये व्रज की जो सुंदरिया है, व्रज की जो वनिता है, जिसका मुख सुंदर हो और उससे भी ज्यादा उनका स्वभाव सुंदर हो, उस नारी को वनिता कहते हैं संस्कृत, जो सर्व गुण सौंदर्य से परिपूर्ण हो उसे संस्कृत में वनिता कहते हैं।
व्रजवल्लवीना,
ये व्रज की जो ये वनिताएं है, सुंदरिया है अर्थात गोपिया है, और उनको क्या सौभाग्य मिला? भगवान श्री कृष्ण के गले में उसने भुजा डाली रास में, और भगवान ने अपने कर कमलों को उन गोपियों के कंठ में पधराया। बड़ी प्रेम लीला है, जय जय रास लीला सर्व रस सार।
रासोत्सवस्य भुजदंड गृहीत कंठ,
और हमारे कृष्ण जी का एक स्वभाव है, उनके भुजा का एक स्वभाव है कि उसको राधा रानी के कंधे पर रखने की आदत है। श्रील प्रभुपाद जी ने जब प्रथम बार वो पोस्टर बनाया था कृष्ण बुक जो हमारा है समरी स्टडी, तो उसमें आप देखेंगे क्या क्या पेंट किया है राधा कृष्ण, तो फॉरेन में लोग पूछे थे हु इज दिस गर्ल, ये कौन है, ये लड़की कौन है कृष्ण के साथ। भाई ये कृष्ण तो समझ में आता है, लेकिन नए नए लोग को पता नहीं कि ये क्या है। ये कृष्ण की आलादिनी शक्ति है, भगवान से इतना प्रेम और सेवा किया है कि कृष्ण उनके अधीन है, उनको पूरे विश्व का वो आश्रय है, लेकिन राधा रानी उनको आश्रय देती है। आप चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे ना, राधा महिमा, उसमें वर्णन है राधिकार प्रेम गुरु आमी शिष्य नट, राधिका प्रेम में मेरी क्या है, गुरु है, मैं तो उसका शिष्य हूं। लेकिन इन सारी कथाओं को कहने सुनने का अधिकार सबको नहीं है, लेकिन उद्धव जी यहां कोटेशन देते हैं, उद्धव जी तो साक्षात्कार कहते हैं और राय जी इस बात को कोटेशन देते हैं कि जो गोपियों को रास में प्रेम भक्ति प्रसाद मिला वो लक्ष्मी को नहीं मिला, स्वर्ग की स्त्रियों को नहीं मिला, किसी को नहीं मिला, जो गोपियों को मिला। और चैतन्य महाप्रभु जब चतुर्मास में श्रीरंगम में गए और वेंकट भट्ट से उसका संवाद हुआ, तब महाप्रभु ने पूछा था कि श्रुति पाइल लक्ष्मी ना पाइल इते की कारण। अरे वेंकट भट्ट जी जरा ये बताइए कि आपकी जो ये अधिष्ठात्री आपकी जो लक्ष्मी जी है विष्णु की पत्नी, उसको रास में एंट्री क्यों नहीं मिला? मानो वेंकट भट्ट पूछे कि प्रभु जी आप कैसे कहते हो कि लक्ष्मी जी को एंट्री नहीं मिला रास में, बोले भागवत में लिखा है, नागपत्नियां कहती है कस्यानुभावो न देव विद्महे
तवांग्रि रेणो स्पर्शाधिकारम।
कालिया के सर पर जब कृष्ण ने नाच किया तो नाग की पत्नियों ने देखा कि ये हमारा पति कभी सोलामाला नहीं किया, कभी एकादशी नहीं रहा, कभी मंदिर नहीं गया, तो ये तुम्हारा चरण कमल कैसे पा गया, हमको भी समझ में नहीं आता। नाग पत्नियां कृष्ण से कहती है कि हमारा जो ये है दुष्ट इष्ट पति परमेश्वर, ये कभी कुछ भक्ति किया हमको पता नहीं, एंगेजमेंट के पहले भी इसका रिकॉर्ड हमने देखा, शादी के पहले भी ये कभी गया नहीं मंदिर, क्योंकि कुछ लोग शादी के पहले जाते हैं बाद में नहीं जाते, फिर उसको लगता है कि हमारा ससुराल ही मंदिर है, वहीं के चक्कर काटते हैं, ये तो पहले भी नहीं गया बाद में भी नहीं गया, आपका चरण कैसे पा गया। और गोपी गीत में भी है ना, गोपिया कहती है फणी फणार्पितम् ते पदाम्बुज घृणकुचेषु न ग्रन्थिहक्षयम्। अपने फणी के फण पर भी हे श्याम सुंदर अपने चरण पधराए हैं, तो हम दासियों पर क्या गुनाह दीजिए हमें। तो नाग पत्नियां कहते कि जिस चरण कमल की रज के लिए तो लक्ष्मी तप करती है, विहाय कामान सुचिरम दडब्रता यदवांछया श्री ललना चरम तपो। नाग पत्नियां स्तुति करती है भागवत के 17वें अध्याय में दशम स्कंध में, चैतन्य महाप्रभु ने प्रणाम प्रमाण दिया, तब राय ने कहा प्रभु जी मेरे को समझ में नहीं आता, आप बताओ लक्ष्मी जी को क्यों नहीं मिला, मेरे को क्या मालूम। तो भगवान ने कहा कि गोपियों को ही मिलता है, लक्ष्मी भी गोपी बनेगी तो मिलेगा, क्योंकि कृष्ण गोप है, नंद नंदन है, और कृष्ण का सानिध्य सौभाग्य रास उसे ही मिलेगा जो गोपी बनेगी, और स्त्रियों को यह लाभ नहीं मिलेगा। इसी बात को यहां कहा जा रहा है, गोपियों को परम सौभाग्य शरद पूर्णिमा की रास लीला में भगवान ने दिया, और उसी का एक श्लोक रामानंद राय फिर से कहते आगे बढ़ाइए। तासा महावीर भूचोरी स्मयमानं मुखाम्बुजं पीताम्बरं धरास्त्रगवी साक्षा मन्मथ मन्मथ। भगवान जब रास से अंतर ध्यान हो गए तो गोपियां रोने लगी, राधा रानी को लेकर कृष्ण अलग चले गए। रुरुदु सुस्वर राजन कृष्ण दर्शन लालसा, सारी गोपियां कृष्ण को देखा नहीं ढूंढ रही इसलिए रो रही है, रुरुदु स्वर में रोना भी कृष्ण गोपियों का स्वर में था, कैसा रो रही थी। सनातन गोस्वामी कहते हैं कि कृष्ण के प्रेम में ब्रज गोपियों का रोना इतना सुंदर मधुर और आर्त करुणा थी कि पत्थर भी फट गए, और भगवान से कृष्ण तासाम आविर्भूत शौरी, ये शौर वंश में प्रकट हुए शौरी भगवान आविर्भूत मतलब प्रकट हो गए गोपियों के बीच यमुना के तट पर, कैसे लग रहे थे साक्षात मनमथ मनमथ, मन को मथ दे उसे कामदेव कहते हैं, और कामदेव को भी जो मोहित कर दे इसलिए कृष्ण को मदन मोहन कहते हैं। साक्षात मनमथ, मन को मथ देता है काम, काम प्रकट होता है तो कुछ सूझता नहीं, कामातुराणाम न भयम न लज्जा, क्योंकि काम का विजय है सर्वत्र। लेकिन वो कामदेव जब यमुना के तट पर नारद जी ने भेजा और कृष्ण के मधुरी सौंदर्य को देखा, वो भी कोमा में चला गया, मूर्छित हो गया, बोले कहीं भी नहीं चला हमारा। इसलिए गोपियों ने कहा, चैतन्य महाप्रभु गंभीरा में आस्वादन करते हैं, चढ़ी गोपी मनोरथे मन मथे रमन मथे नाम धरे मदन मोहन, नाम धरे मदन मोहन। गोपियों के मन में चढ़े रहते थे और इसलिए कृष्ण को मनमथ कहते हैं, जो काम को भी मत देते हैं, लेकिन हमारी राधा रानी मदन मोहन मोहिनी है, ऐसे मनमत मनमत भी पिघल जाते हैं जब श्री जी का श्रीमुख देखते हैं तब। पीताम्बर धरा, कृष्ण जब यमुना के तट पर प्रकट हुए तो इस श्लोक में लिखा है, कौन सा श्लोक लगा रहे हैं इसके आगे वाला जो, यही है ना 81। पीताम्बर धरा, भगवान कृष्ण जब आए गोपियों के सामने तो क्या पकड़े हुए थे हाथ में? पीताम्बर धारण किए हुए थे। पहनना भी धारण होता है, लेकिन सनातन गोस्वामी कहते धरा मतलब हाथ में पकड़ा हुआ था जब प्रकट हुए तब, क्योंकि गोपियों को रुलाया ना, इसलिए श्याम सुंदर क्षमा भाव से खड़े हैं कि आपका प्रेम जानने के लिए मैं कहीं नहीं गया था, इधर ही छुपा था, मैं जानना चाहता था कि आप क्या गाती है क्या रोती है, लेकिन मैंने आपको कभी छोड़ा नहीं। पीताम्बर पकड़ा मतलब राधा रानी के शरीर का वर्ण कैसा है? तप्त कांचन गौरांगी, पीले सुवर्ण वर्ण का। पीताम्बर भी कैसा है? हिरण्य परिधि वनमाल बरह, बरहा पीड़ नटवर वपु कर्णियो कर्णिकारम विब्रत वास कनक कपीशम वैजयम तिंच माला। कनक मतलब सोना, सोने की तरह का चमक निकलता था भगवान के पीताम्बर से। मतलब भगवान ये कह रहे हैं कि पीताम्बर पकड़ के कि हे राधा रानी, मैंने आपको छोड़ा, मैं कभी छोड़ ही नहीं सकता। आत्मा तुराधिका तस्य, मेरा प्राण आत्मा तुम, हम दोनों अलग थोड़ी है। राधा कृष्ण एक दुई एक स्वरूप, लीला रस आस्वादरे धरे दुई रूप, चैतन्य चरितामृत एक है दोनों, तो लीला रस के लिए दो होते हैं। स्त्रग्वी मतलब माला, ये वनमाला पहनी थी भगवान ने वैजन। स्त्रग्वी शब्द का अर्थ होता है माला, और क्या कहते हैं? मनमत मतलब भगवान माला भी फ्रेश पहन के आते हैं, क्योंकि पूर्णमासी वृंदा देवी से नया माला डालती है, अगर माला बिखरा हुआ होगा ना तो भी पता चल जाएगा किसी और सखी के साथ ये लीला हो चुका है, इसलिए भगवान ऑलवेज फ्रेश माला पहनते हैं। आप जानते ना कभी कभी हम विहार करते हैं लीला, तो वस्त्र बिगड़ना नहीं चाहिए, स्त्री टाइट, क्योंकि फ्रेश लगना चाहिए, नहीं तो राधा रानी को, राधा रानी पहले माला देखती थी, अगर माला फ्रेश है तो लगता है कि सीधा नंद भवन से आए, अगर माला कहीं बिखरा बिखरा हुआ है किसके पास गए थे, सीधा डाउट होता है। इसलिए श्याम सुंदर बड़े सावधान है, स्त्रग्वी वैजयंती माला पहने हुए है, जो माला फ्रेश झूम रही थी भगवान के गले में माला, जैसे हाथी चलता है तो माला कैसे झूमती है और घुटने तक लंबी, स्त्रग्वी। बहुत कुछ है इन पर भी, लेकिन सबका सबका मन रखना है, इसलिए आगे बढ़ना है। कृष्ण प्राप्ति उपाय बहुविधि होय, कृष्ण प्राप्ति तारतम्य बहुत अच्छा। हे महाप्रभु, कृष्ण को प्राप्त करना, कृष्ण को प्रेम करना, उसके बहुत प्रकार है, बहुविधि होय। कोई दास भाव में प्रेम करे, कोई सखा बन के प्रेम करे, कोई मातृभाव में प्रेम करे, और कोई कुछ नहीं करे, केवल बस हाँ भगवान है, मैं उनका हूं, वो उनके था घर पे, मैं मेरे घर पे, ऐसे भी भगत है शांत हमेशा, कोई लेना देना ज्यादा नहीं, सब है अलग अलग बहुत प्रकार है, लेकिन तटस्थ हैया न्यूटन होकर अगर विचार किया जाए तो दास वात्सल्य साख्य सांग सब में श्रेष्ठ माधुर्य है। ऐसे सब महान है, सब भक्ति श्रेष्ठ है, लेकिन न्यूटन रहकर विचार किया जाए तो महाप्रभु के सामने कहते तत्स्थ हैया विचारी ले, अगर हम तत्स्थ होकर विचार करें तो तारतम्य है। क्या तारतम्य है इसके आगे बढ़ाइए। किंतु यार यही रस सही सर्वोत्तम, ये जो रस हमने अभी कहा कांता वाला, प्रियतमा वाला, कृष्ण की प्रिया माधुर्य रस, ये श्रेष्ठ है। ऐसे सब श्रेष्ठ है, लेकिन अगर विचार किया जाए गहराई से तो ये श्रेष्ठ है, और इसके लिए श्लोक करते हैं, देखो, यथा तरमसोस्वाद विशेष उल्लासमयी रति वासनया स्वादि भासते स्वापिकश्चित। चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा, अरे रामानंद राय ने महाप्रभु से कहा कि राधा कृष्ण के चरणों, कृष्ण का प्रिया बन के प्रेम करना ये श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि माधुर्य प्रेम में जो रस आस्वादन होता है उसकी पूर्णता है कि अन्य सारे रस इसमें आ जाते। करिए 87। आकाश आदि गुण ये न पर पर भूते दुई तीन क्रम बाड़े पंच पृथ्वी ते। देखो क्या उदाहरण दिया, आप सबने आकाश देखा है, आकाश देखते ही हो, और पांच महाभूत गीता में सुने हो भूमि राप नलो वायु पृथ्वी जल आकाश गगन समीर, है ना ये। अब देखिए पृथ्वी का गुण क्या है, गंध, पृथ्वीम गंध गीता के अनुसार, ये जो गंध निकलती है पृथ्वी का है। जैसे हमारे पास पांच ज्ञानेंद्रिया है ना, नाक से हम गंध लेते हैं, आंख से हम रूप देखते हैं, आंख से रूप, कान से शब्द सुनते हैं कि क्या है, जीवा से स्वाद लेते हैं टेस्ट, और त्वचा से स्पर्श ठंडा गरम, ज्ञान का अनुभव करते ठंडा है रूप काला गोरा, अच्छा बोला कि बुरा बोला, मीठा है कि न, और खराब सुगंध है कि अच्छी है कि नहीं। ये ज्ञान देने वाली इंद्रिया है, इसको तन्मात्रा बोलते हैं संस्कृत में, विषय बोलते हैं, शब्द रूप रस गंध विषय, ये शब्द आपने सुने होंगे। लेकिन ये कहां से आया, पंच महाभूत में ही है, सब है तो पंच महाभूत में ना। पृथ्वी से गंध निकला, वायु में स्पर्श, स्पर्श होता है ना वायु से, और उसके बाद जल, स्वाद कहां है, रसो अपसु कौनते है, ये जो स्वाद जल में, और अग्नि में रूप, अग्नि होता है तभी रूप दिख, प्रकाश में ही रूप दिखते हैं, और ये शब्द जो हम सुन रहे हैं एक दूसरे को आकाश के अंतर्गत। अब देखिए आकाश आदि गुणे, जैसे आकाश में सब आ गया, पृथ्वी में सब नहीं आया, पृथ्वी में गंध है लेकिन वायु में गंध भी है और स्पर्श भी है, दोनों आ गया, जल में गंध भी है स्पर्श भी है और रस भी आ गया, उसके ऊपर अग्नि में गंध भी है स्पर्श भी है रस भी है और रूप भी है, लेकिन आकाश में गंध रूप रस स्वाद और शब्द पांचों आ गया। ऐसे ही दास्य में केवल दासता है, लेकिन दास कभी कृष्ण कोई आरती उतारता है दंडवत मारता है लेकिन वो कृष्ण के कंधे पर नहीं चढ़ सकता, लेकिन साक्ष्य दास भी है, सखा जब कृष्ण थक जाते थे ना तो उनकी चरण सेवा भी करते थे, सखा में दास्य भी होता है। जैसे आप दोनों मित्र कहीं जा रहे हो तो उस मित्र के साथ आप खाना खाते हो, उसकी प्लेट से खाते उसको भी देते हो, और लड़ते झगड़ते भी हो या अपमानजनक शब्द भी बोलते हो, चल निकल ये रे तू वगैरह, बराबर। लेकिन कहीं फिर आपको पता चले कि आपका मित्र थका हुआ है तो आप कहते ना बैठ जा सीट पे, आपको पता चले कि आपके मित्र को बुखार है आप अपनी आप खड़े होकर उसको बिठाओगे, मतलब मित्र है उसके साथ कंधे पर चढ़ते थे उसको मारते थे लेकिन उसकी सेवा भी करते हो। अब ये सारा समझाने जाऊंगा ना तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन यहां सब बैठे हुए सुमेधा बुद्धिमान लोग हैं, संक्षेप में समझ जाएंगे कि साख्य में दास्य भी आ गया, इसी तरह माधुर्य में साख्य दास्य दोनों आ गया, क्योंकि ये जो सखी है ना वो कृष्ण की सेवा भी करती है सखी भी बनती है, उसमें पूर्ण है सब है, और दास भी है। जैसे गोपी गीत,
शरद दास ये साधु जात सत सरसी जो दर श्री मृषादृश सूरत नाथ ते अशुल्क दासी का वरद निग्न तो नेह किम वध।
अशुल्क दासी का, हे श्याम सुंदर आपके इस सौंदर्य सुधा को देखकर हम बिना मूल्य के आपकी दासी हो गए, है ना। एक गोपी की दासता स्वीकार करती है, इसी तरह यहां पर सिखाया जा रहा परिपूर्ण कृष्ण प्राप्ति होय प्रेमा हैते कृष्ण प्रेमार वश कृष्ण कहे भगवते। ये व्रज की गोपियों ने जो माधुर्य रस में कृष्ण की प्रियतमा बनके जो समर्पण जो त्याग जो प्रेम जो कृष्ण को प्रसन्न किया वो पूर्ण है, और कृष्ण की प्रतिज्ञा है कि ऐसे प्रेम के मैं अधीन हो जाता हूं। और कृष्ण ने क्या प्रतिज्ञा लिया है, आगे बढ़ाइए। कृष्ण की प्रतिज्ञा सुनाते हैं वो भागवत में कि मैंने गोपियों को कहा है, मही भक्ति ही भूताना अमृतवाय कल्पते दिष्टयाम यदासित मत्स्नेहो भवती नाम मदापना। हे उद्धव, मदा मेरे जो भक्त है, मेरी जो गोपिया कोई भी हो, अगर मुझे प्रेम करता है, भक्ति करता है, समर्पण करता है, तो मैं उसके अधीन हो जाता हूं, मैं उसका हो जाता हूं। और ऐसी प्रतिज्ञा मैंने तुम्हारे सामने उद्धव बोल रहा हूं या बता रहा हूं ऐसा नहीं, विश्व विख्यात भगवत गीता में भी बोला हूं। कृष्णेर प्रतिज्ञा दृढ़ सर्व काले आछे, कृष्ण ने सर्वत्र गीता में बोल दिया है क्या, जे जे छे भजे, जो मुझे भजता है कृष्ण तारे भजे ये छे, जो सा भक्त भगवान को भजता है ऐसे भगवान भी भक्त को भजते हैं। और गीता का श्लोक है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वश। लेकिन ये गीता में मैंने बोला कि जो भगत जैसा मुझे भजता है, जैसा मुझे समर्पण करता है, जैसा मुझे प्रेम करता है, मैं भी सेम उसे भजता हूं, समर्पण करता हूं, प्रेम करता हूं, ये मेरी प्रतिज्ञा है। अच्छा, आपकी ये प्रतिज्ञा है तो आपकी प्रतिज्ञा तो फेल हो गई। भगवान ने अनुभव किया कि मैंने गीता में बोला कि जो मुझे प्रेम करता है, जो मुझे भक्ति करता है, ऐसा ही करूंगा, लेकिन गोपियों ने सब कुछ मुझे छोड़ के प्रेम किया, क्या मैं अपना सब कुछ छोड़ सकता हूं कभी? सब कुछ मतलब गोपियों ने मां छोड़ दी, मैं यशोदा को छोड़ सकता हूं? गोपियों ने पति छोड़ दिया, मैं रुक्मणी को छोड़ सकता हूं पत्नी को? भगवान ने गीता में कहा कि जो सब कुछ जो जैसा करेगा ऐसा सेम करूंगा, तो गोपियों ने तो अपना धर्म छोड़ दिया, लोक छोड़ दिया, पति छोड़ दिया, पुत्र सब छोड़ दिया और कृष्ण को प्रेम किया। और कृष्ण चाहे तो क्या अपना गोलोक छोड़ सकते हैं, चाहे तो अपनी भक्ति भक्त छोड़ सकते हैं? तो मतलब अपनी प्रतिज्ञा बैंड इस भक्ति में, हमारी मिरर वाली पगड़ी भक्ति में तो चलेगा, क्योंकि हम लोग भी संडे के संडे आते हैं तो भगवान भी कभी कभी नजर डालते हैं, क्योंकि हम लोग सब कुछ छोड़ते नहीं तो भगवान बोले तुम भी सब कुछ नहीं छोड़ते तो हम भी राधा रानी के साथ लीला करते, जैसा है वैसा। लेकिन गोपियों ने तो सब कुछ छोड़ के प्रेम किया और भगवान सब कुछ छोड़ नहीं पाए, और इसीलिए भागवत में भगवान ने गोपियों के सामने कहा है, न पार ये हम निरवाज संयुजा स्वसाधु कृत्यम विबुधायुषा पिब यामा भजन दूर जरगे श्रृंखला समृष्य तद्वत् प्रतियाति साधुना। भगवान श्री कृष्ण जब रासलीला में प्रकट हुए ना, गोपियों ने गीत गाया तो भगवान प्रकट हुए, तब गोपियों ने कहा कि आपने हमें बुलाया, हम पति लोक वेद सब धर्म मर्यादा को छोड़कर आपके शरणों में आ गई, और आप है कि हमें छोड़कर चले गए। भगवान ने कहा मैं कई छोड़ के नहीं गया, मैं आपका प्रेम बढ़ाने के लिए, आपकी मनोरथ, आपके मन में क्या चल रहा है वो जानने के लिए नहीं, लेकिन आप हमारे सामने से तो अदृश्य हो गए ना। और गोपियों ने रो रो के अपनी चुनरी, करोड़ों गोपियां थी और सारी गोपियों ने अपनी चुनरी लगा दी, क्योंकि प्रेम उतना ही था प्रियतम के प्रति, क्योंकि प्रेमी कुछ भी करे लेकिन सच्चा प्रेमी को कभी कंप्लेन नहीं होता और कभी द्वेष नहीं होता, वो तो झुका हुआ है ना। भले तुमने कुछ भी किया श्याम सुंदर, सब गोपियों ने अपनी चुनरी लगा दी और भगवान उस चुनरी पर बैठ गए, चुनरियों का आसन। बड़े बड़े योगिंद्र मुनिंद्र मन में ध्यान धर के भगवान के लिए सिंहासन बनाते, वहां भगवान जाते नहीं, लेकिन गोपियों का आंसू पिक लगा हुआ था, काजल लगा हुआ था, पसीना लगा हुआ था रासलीला में, ऐसी चुनरी पर बैठ गए। क्यों? क्योंकि ये प्रेम का आसन था। अब पढ़िएगा भागवत में लिखा है, ये सारी चर्चा बहुत कम जगह होती है। और जब उस प्रेम आसन पर भगवान बैठ गए ना, तब भगवान ने चरणों में बैठी हुई करोड़ों गोपियों को कहा, हे गोपियों, न पार ये हम मैं आपके ऋण से कभी मुक्त नहीं हो सकूंगा। अगर मैं ब्रह्मा का आयुष्य ले लूं, देवताओं का जितना जीवन है उतना जीवन में लंबा स्वीकार करके पृथ्वी पर आप लोगों की सेवा करूं ना, तो भी आपका ऋण मैं चुका नहीं पाऊंगा, ऐसा भगवान बोले हैं। आपने हमें ऋणी बना दिया क्योंकि आपने सब कुछ एक तिनके की तरह त्याग दिया। बड़े बड़े लोक धर्म की जंजीरों को आपने काट दिया, बड़े बड़े धर्म के मर्यादा के सेतु को तोड़ के आपने मुझे प्रेम किया, और इस प्रेम के नाते मैं आप लोगों का ऋणी हूं। देवताओं का आयुष्य लेकर भी आप लोगों की चाकरी करो ना, गुलामी करो ना, तो भी आपका ऋण नहीं उतार पाऊंगा, ये भगवान ने बोला है। इसलिए हमारे व्रज के प्रेमी कहते हैं कि दुनिया का मालिक है, बादशाह है, गुरु है, लेकिन वृषभानु लली के गली को गुलाम है तेरो गिरधारी। गिरधारी क्या है? वृषभानु लली के गली का गुलाम। ये व्रज की बड़ी ऊंची बातें हैं संतों की। तो भगवान ने इस तरह से कह दिया, और भगवान कृष्ण सबसे सुंदर है, लेकिन इसके आगे 94 में कहते हैं, यद्यपि कृष्ण सौंदर्य माधुर्य धुर्य व्रज देवी रसे तारे बाडये माधुर्य। कृष्ण बहुत सुंदर है, बहुत मधुर है, लेकिन बिना राधा के, बिना गोपियों के उनकी मधुरता सुंदरता कम। बहुत है लेकिन सबसे, उससे भी ज्यादा सुंदरता मधुरता बढ़ जाती है जब राधा रानी बाजू में आ जाती है। इसलिए हम गौड़ीय वैष्णव अकेले कृष्ण को नहीं मानते, राधा के साथ कन्हैया है तब दंडवत है। क्योंकि हम प्रिया जी की परंपरा, उनके दास ललिता विशाखा रूप मंजरी। और भक्ति विनोद ठाकुर ने गाया है, राधिका चरण रेणु भूषण करिया तनु अनाया से पाए गिरिधारी। राधा रानी का आश्रय लेगा वो गिरिधारी को पाएगा, इसलिए गाते राधे जय जय माधव दयिते, राधे माधव दयिते, राधे जय जय माधव दयिते। गोकुल तरुणी मंडल महिते, राधे जय जय माधव दयिते, राधे। दयित शब्द का अर्थ होता है प्रिय, दयित सखा मतलब प्रिय, अतरंग, इंटीमेट, अंग्रेजी में कहते हैं ना इंटीमेट, प्रिय, अतरंग, एकदम क्लोज, दिल का रिश्ता, हरी प्रिय। हम कहते हैं ना, तब तक अंजन गौरांगी श्री राधे वृंदा वृषभानु सुते देवी प्रणमामी हरी प्रिया। ये हरी की परम प्रिया है, दयित माधव की ये दयिता है, मतलब प्रिया है। कौन? राधे, तुम्हारी जय हो हे माधव प्रिया राधे, तब जय हो। गोकुल तरुणी, ये गोकुल की जितनी तरुणी मतलब युवा नारिया, ये कुमारी गोपिया, और उसमें जो मंडल होता है जब वो इकट्ठी होती है उसमें सर्वश्रेष्ठ आप हो, सारे गोपियों में नंबर वन। गोकुल तरुणी मंडल महिते, राधे जय जय माधव दयिते, राधे। यहां पर चैतन्य महाप्रभु से रामानंद राय कहते हैं कि भगवान परम सुंदर, परम मोहन, लेकिन राधा रानी के, गोपियों के संग में आते हैं तो और सुंदरता में चार चांद लग जाते हैं, मधुरता में मधुराधिप्य मधुरम हो जाते हैं, मधुराती मधुर हो जाते हैं राधा के साथ, गोपियों के साथ। और ये भागवत में लिखा है, तत्राति आगे वाला श्लोक, सुशुभेता भी भगवान देव की सुतः, मध्य मणिना हेमानाम महामरकतो यथा। एक गोपी गुण वर्णन शुक मुख से निकल रहा है गंगा तट पर, सुखजी कहते तत्रा अति सुशुभे राजन, हे परीक्षित भगवान श्याम सुंदर गोपियों के संग में रास में यमुना तट पर और सुंदर लग रहे थे, जैसे डायमंड ज्वेल ये जो मणि होता है बहुत सुंदर होता है, लेकिन वो सोने में मढ़ा जाए तो उसकी सुंदरता मध्य मणि ना हेमाना, हेम मतलब गोल्ड, गोल्ड अपने आप में वैल्यूबल है, सुंदर है, हीरा भी मणि भी अपने आप में वैल्यूबल प्रकाशमान है, लेकिन दोनों का जब मेल हो जाए तब वैल्यू भी बढ़ जाता है और सुंदरता भी बढ़ जाता है। ऐसे ही कृष्णा जब राधा रानी के गोपियों के साथ हो जाए तो महामरकतो यथा, उसका माधुर्य सौंदर्य और सीमा को पार हो जाता है। इस तरह जब सुना प्रभु कहे यही साध्य अवधि सुनिश्चय, कृपा करी यदि कहो आगे किछु होय। अरे बस बस, इससे बेस्ट परे तो कुछ हो ही नहीं सकता, फिर भी अगर इसके आगे आप कुछ जानते हो तो प्लीज कहो अपना समझ के। मुझे नहीं लगता कि इसके परे कुछ हो सकता है, लेकिन कुछ है तो प्लीज आप कृपा करके कहो। राय कहे इहार आगे पूछीते हैं न जने, मैं इस विश्व ब्रह्मांड में इसके आगे कोई मुझे पूछेगा ये कभी मैं सोचा नहीं था अपने जन्म कुंडली में, ऐसा इतिहास होगा कि इतना बताने के बाद हायर से हायर बात में रख दिया आपके सामने और फिर भी आप कह रहे कि ओके पूर्ण है कंप्लीट, लेकिन फिर भी अगर आगे कुछ है तो बता सकते हैं आप, हमें अपना मानते हैं। तो राय ने कहा कि इससे आगे पूछने वाला त्रिलोकी में जन्म लेगा ऐसा मैं सोचा नहीं था, आपने मेरा रिकॉर्ड तोड़ दिया। ये तो इन नाई जाने अच्छा ही भुवने, देखो लिखा है ना, ये तो दिन नहीं, ऐसा दिन मेरे जीवन में मेरी कुंडली में आएगा कि कभी मैं प्रवचन करूं या व्याख्यान दूं, शास्त्र बोलो इससे आगे भी पूछने वाला कोई निकलेगा त्रिभुवन में, ऐसा मैं सोचा, ये मेरी बुद्धि से परे है, लेकिन फिर भी आप पूछ रहे हो ना महाप्रभु तो हम बताते हैं। क्या इहार मध्य राधा प्रेम साध्य शिरोमणि, यहाँ रम हिमा सर्व शास्त्र रवखानी। इससे आगे सुन लीजिए लास्ट एंड फाइनल, राधार प्रेम सर्व शिरोमणि, क्योंकि इस अब तक क्या बताया था गोपियों का, गोपियों के बीच में अच्छे लगते हैं, जो सौभाग्य गोपियों को मिला वो किसी को नहीं मिला, और अब महाप्रभु पूछ रहे कि ये गोपी प्रेम माधुर्य में सब रस आ गया साक्ष्य दास्य सब, लेकिन इसके आगे सारी गोपियों में श्रेष्ठ कौन है, राधा रानी, और इसलिए कोटेशन देते यथा राधा प्रिय विष्णु तस्या कुंडम प्रिय तथा सर्व गोपीशु सेवेका विष्णु अत्यंत वल्लभा। सर्व गोपीशु सा एव एका, ये सभी गोपियों में एक ही है वृषभानु नंदिनी जिसका नाम है राधा, और उसका कुंड भी मुझे इतना प्रिय है राधा कुंड, और वो राधा भी मुझे इतनी प्रिय है, विष्णु की अत्यंत वल्लभा है। राय ने कहा आप सुनना ही चाहते हो ना इसके आगे, राधा प्रेम सर्वोच्च है क्योंकि राधा भगवान की गोपियों में सर्वश्रेष्ठ है, और राधा जितनी प्रिय है उतना ही राधा कुंड प्रिय है क्योंकि कोई अंतर नहीं, क्योंकि इसका प्रमाण क्या है अब बताना पड़ेगा ना कि राधा ही सबसे बेस्ट है प्रिय है तो प्रमाण भी देना पड़ेगा, तब प्रमाण देते हैं भागवत का, अनयाराधितो नूनम भगवान हरीश्वर यन्नो विहाय गोविंद प्रीतो यामनयद्रह। कृष्ण अन्वेषण 29वें 30वें अध्याय का यह श्लोक है कि भगवान गोपियों के मध्य से जब राधा को लेकर चले गए तो सारी गोपियां ढूंढ रही कहां गए श्याम सुंदर, कहां गए कहां गए, तब तक देखा श्याम सुंदर के चरण यमुना की बालू में, बोले ये रहो देखो इसके चरण है, तो दूसरी सखी ने कहा ये तो श्याम के चरण है हम जानती है क्योंकि इसमें शंख चक्र का निशान है, लेकिन इसकी बाजू में किसका चरण है, बोले हमारे बीच में से कौन गायब है, कौन गायब थी, राधा रानी, मतलब ये उनका है। अनयाराधितो नूनम ये उसका चरण है भगवान हरीश्वर प्रीतो यामन। जिसने भगवान से हम सबसे बढ़कर प्रेम किया है, हमने भी प्रेम किया, सेम त्याग किया, लेकिन हम सबसे जरा हटके जरा बढ़ के जिसने, इसलिए तो भगवान उसको लेकर हम सबके बीच में से चले गए। ये 100 नंबर का श्लोक था, वादा पूरा। लेकिन 101 नंबर का श्लोक हमारी ओर से गिफ्ट में सुनाते हैं। ये श्लोक दास को दिल से इतना प्रिय है क्योंकि महाप्रभु ने क्या कहा, इतना सुन राय बोलते गए, महाप्रभु सुनते गए, आगे कहो उत्तम होय, आगे कहो, इसके आगे सब ठीक है, तुम बोलो चाहे तो करो। तब कहा रामानंद राय ने, प्रभु कहे आगे कहो सुनिते पाए सुखे, अपूर्व अमृत नदी बहे तुम्हार मुखे। हे रामानंद राय, कृष्ण की कथा का ये मधुर अमृतमय नदी आपके मुख से बह रहा है, मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि मैं वर्णन नहीं कर सकता। प्रभु कहे तुम्हार मुखे पाईते बड़ो सुखे, मुझे इतना सुख मिलता है आपके मुख से ये कथा सुनकर। क्यों? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आपके मुख से क्या निकल रहा है, अमृत का नदी निकल रहा है। जैसे 50 नंबर के श्लोक में क्या कहा था, आपको याद है 50 नंबर का श्लोक हमने क्या कहा था? तुमार मुखे कृष्ण कथा सुनिते होयो मन। रामानंद राय को प्रथम दिन जब मिले, प्रथम दिन ही है शुरुआत में, क्या बोले थे, आपके मुख से मुझे कृष्ण कथा सुनने का मन हो रहा है, याद आया, मैंने बहुत बार गाया था इसलिए। तुमार मुखे कृष्ण कथा सुनिते होयो, लेकिन अब कह रहे तुमार मुखे सुनिते पाए सुखे, आपके मुख से सुख मिल रहा है, अपूरा अमृत नदी बहे तुमार मुखे। क्यों? क्योंकि अब तो सुनने लायक बात आई है। क्यों? क्योंकि प्राण से भी प्रेम धन कृष्ण भक्ति कृष्ण रस की विग्रह स्वरूपा साक्षात वृषभानु नंदिनी का गुण आया। क्योंकि राधा रानी की करुणा है वो कृष्ण भी नहीं समझ पाते, इसीलिए गौरांग उसी राधा का हृदय लेकर आए हैं ना, प्रेम भक्ति की धारा, भक्तों भक्ति करना है तो कृष्ण प्रेम भक्ति का भंडार वृषभानु नंदिनी राधा रानी के चरणों में, और वो इतनी करुणामयी है जिसको हम भजन में गाए थे ना, गाए नहीं लेकिन उस भजन में क्या है, करुणा कुरुमयी करुणा हरि। जैसे गंगा और यमुना की धारा बहती भूमि पर, ऐसे बहती है ये ममता राधा रानी आपकी, सारी सखियां है दीवानी। हे राधा रानी, आपके हृदय में जो ममता है जो करुणा है वो ऐसा है कि मानो युगों युगों से अनंत गंगा और जमुना की धारा बह रही हो। हमें क्या करें, बस और कुछ नहीं, इतना आशीर्वाद दीजिए कि आपके और आपके प्राण प्रियतम के गुण गाते रहे, जब तक सांस चले और कोई आशा नहीं।
उम्र भर गाती रहूं मैं महिमा श्याम आपकी,
उम्र भर में आपकी महिमा को गाती रहूं। क्या आशा है,
अपने चरणों में ही रखना मेहरबानी आपकी,
हे राधा रानी, जिस श्याम प्रेम धन आपका जीवन है, बस उसी शाम के चरण कमलों की भक्ति की भीख मांगते हैं हम आपके चरण, क्योंकि आप हो प्रेम की भंडार। महाप्रभु के सामने राय जी ने क्या कहा, जाइए वापस 98
इहार मध्य राधा प्रेम सात्य शिरोमणि यहार महिमा सर्व शास्त्रे रवखनी,
सब जितना भी प्रेम कृष्ण को करने वाले अनंत युगों से हजारों लाखों करोड़ों भक्त हो गए, लाखों करोड़ों आज भी होंगे और करोड़ों अब जो खरबों और होंगे, लेकिन राधा ने जो प्रेम किया ऐसा न भूतो न भविष्य हो नहीं सकता। सर्व साध्य शिरोमणि, इससे बढ़कर कुछ नहीं है। और इसलिए राधा इतनी प्रिय है तो राधा का कुंड भी उतना ही प्रिय। महबूब की हर चीज महबूब होती है, कहते हैं ना, अगर महबूब प्रिय है तो उनकी चूड़ी भी प्रिय, उनकी चुंदरी, सब महबूब का रूप ही है ना। राधा प्रिय है तो उसका कुंड भी उतना ही प्रिय है। और चैतन्य चरितामृत में वर्णन है, मध्य लीला का 17वां अध्याय 18वां अध्याय, जब महाप्रभु राधा कुंड में स्नान करने गए तब चैतन्य महाप्रभु बोल दिए, जय कुंडे जय जन एक बार करे स्नान। प्रेम भक्ति समर्पण भाव से शुद्ध मन से एक बार भी कोई राधा कुंड में स्नान करे, जय कुंडे जय जन एक बार करे स्नान, तार राधा सम प्रेम कृष्ण करे दान। कृष्ण उसे जो राधा के प्रेम है ऐसा प्रेम दान में दे देंगे। और इसी बात को कृष्णदास कविराज जी ने गोविंद लीलामृत में लिखा है और वो श्लोक भी वहां पर है, क्योंकि कुंडेर महिमा जिन राधार महिमा, क्योंकि राधा कोई अलग नहीं है, राधा ही जल के रूप में प्रकट हुई है, राधा हृदय का प्रेम ही बह रहा है उस राधा कुंड में। इसलिए कहते जय जय राधा श्याम, अष्ट सखियन को झुंड डगर बुहारत साबरो, जय जय राधा कुंड। अरे श्याम सुंदर वहां झाड़ू लगाते, श्याम सुंदर भगवान राधा कुंड में क्या करते हैं, डगर बुहारत सांवरो, क्योंकि हमारी प्रिया का है ये। और इसलिए पद्म पुराण का ये श्लोक यहां रखा गया, यथा राधा प्रिय विष्णु तस्य कुंडम प्रियम तथा। अरिष्टासुर का जब ठाकुर जी ने वध कर दिया, जो कंस ने भेजा था और एक बछड़े के रूप में आया था, भगवान ने उसकी सिंह पकड़ के गर्दन घुमा के उछाल के फेंक दिया, नीचे गिरते ही जमीन पर प्राण निकल गए, सारे सखाओं ने तालियां बजाई, असुर मर गया। लेकिन वृंदावन के कुंजन में निवास करने वाली श्री जी के कान में जब शब्द पड़े कि श्याम सुंदर ने अरिष्टासुर को मारा है, तो ललिता जरा विस्तार से बताओ तो कैसे मारा, बोले बैल के रूप में आया था और भगवान ने उड़ा दिया, 1-2 का 4 कर दिया, आने दो। जैसे ही श्याम सुंदर आए, चलो राधा राधा कुंड पे चलो लीला, बोले दूर रहो, छूना नहीं हमको, एक नंबर के पापी हो, भगवान के हमारा नाम लेता है उसके सारे पाप मिट जाते हैं और मैं पापी हो गया, बोले हाँ गोपाल नाम धारण किए हो लेकिन गाय के बछड़े को मार के आए हो, धर्म का उल्लंघन किया आपने, छूना नहीं हमको, जो गोवध करता है गाय के बच्चे को मारता है उसका हम दर्शन भी, ललिता इसको कहो हटे हमारी नजरों से। ललिता जी ने कहा सुना, चलो पतली गली पकड़ो। भगवान ने कहा अरे मैं आपका प्राण प्रियतम हूं, थे हूं नहीं क्या थे, अभी आपका दर्शन भी वर्जित है। स्वामी ने जी ने बोला सुना नहीं आपने, भगवान कहते ऐसा तुम तो समझो यार, ललिता वो अभी मूड में नहीं है, तुम तो जानती ना हो मुझे कितना प्रेम करती, वो कुछ में नहीं जानती, जिससे हमारी सखी बात नहीं करती उससे हम भी बात नहीं करते, आप निकलिए। क्यों, बोला ना आप पापी हो, अरे भाई एक काम करो पाप अभी धो देते हैं। और भगवान ने अपने लेफ्ट चरण की एड़ी को उधर पृथ्वी पर दबाया राधा कुंड गोवर्धन की तलेटी में, और उस एड़ी से एक कुंड बना दिया और सारे तीर्थों को निवाहन किया, आह्वान किया पधारो, भगवान की आज्ञा पर तो शिव ब्रह्मा पर आचता जाते, इन तीर्थों को क्या कहना, तीर्थपाद स्वयं बुला रहा है, सारे तीर्थ नदियों का जल आके भर गया और नाम हुआ श्याम कुंड। भगवान ने कहा चलो इसमें स्नान कर दे, तीर्थों में स्नान करने से सारा पाप चला जाता है, अब तो हम शुद्ध हो गए ना, शुद्ध हो गए कि नहीं, अब तो प्योर हो गए, अब तो हमारे साथ लीला हो सकती है। भगवान का बसा दिया सबको, बोले हाँ अब शुद्ध हो गए, अब लीला हो सकती है, श्याम कुंड की रचना तो हो गई। लेकिन भगवान ने कहा तुम लोग भी पापी हो, क्योंकि पापी का जो दर्शन करे पापी से बात करे वो भी कुछ तो लगेगा, इसलिए आप लोग को भी शुद्ध होना है तो हमारे कुंड में आओ साथ में स्नान करो। बोले नहीं ललिता इसके कुंड में नहीं जाना, हम क्यों छुए इसके कुंड को, क्योंकि इसका कुंड शुद्ध था, लेकिन ये जितने पापी इनके सखा और ये सरदार इसमें गए ना, ये कुंड भी क्या हो गया, पापी हो गया, क्योंकि इसके कुंड, इसलिए इसके कुंड में हम नहीं जाएंगे। तो बोले तुम लोग में भी तो दोष रहा, बोले हम अपना कुंड बनाएंगे। और राधा रानी ने अपने कंगन से कुंड बनाया, श्री राधा कुंड की, इसी को कंगन कुंड भी कहते हैं। श्याम सुंदर को अपने कुंड से भी ज्यादा, तस्य कुंडम प्रियम तथा, उसका कुंड प्रिया जी से भी प्रिय है। राधा रानी जितनी प्रिय है उतना ही इतना, इसलिए रूप गोस्वामी ने कहा त्रिलोकी में वैकुंठ श्रेष्ठ है, उपदेशामृत में वैकुंठ से श्रेष्ठ मथुरा है, वैकुंठ जनितो मधुपुरी तत्रापि, उस मथुरा से वृंदावन श्रेष्ठ है क्योंकि वृंदावन में रास हुआ, उस वृंदावन से भी गोवर्धन श्रेष्ठ है क्योंकि भगवान के कर कमल कनिष्ठ उंगली में 7 दिन रहा, उस गोवर्धन से भी राधा कुंड श्रेष्ठ है क्योंकि भगवान राधा कुंड में ही तो रास करते हैं, लीला करते हैं, हृदय है राधा रानी का। सेवा विवेकी कौन, कौन होगा जो राधा कुंड का कीर्तन सेवा नहीं करेगा, रूप गोस्वामी ने कहा। इस तरह महिमा गाई जा रही, इसलिए भक्तों प्रेम चाहिए तो राधा अष्टमी आ रहा है। कृष्ण प्रेम कृष्ण के पास नहीं, किसके पास है, राधा रानी के पास, वो भंडार वो ताले की चाबी वहां है, वहां से लेना पड़ेगा। इसलिए प्रार्थना राधा रानी के चरणों में है, राधे जय जय माधव दयिते, मृदंग बजाओ, राधे जय जय माधव दयिते,
राधे जय जय माधव दयिते,
गोकुल तरुणी मंडल महिते,
गोकुल तरुणी मंडल महिते,
राधे जय जय माधव दयिते,
राधे जय जय माधव दयिते,
वृषभानुदधि नवशशिलेखे, अच्छा उसके आगे वाला लाइन, दामोदर रति वरधन वेशे, और एक लेके आओ डबल बजाओ, हरि निष्कोष्ट वृंदा विपिनेश, हरि निष्कोष्ट वृंदा, ऐसे भक्तों कई बार आप लोग गाते हो इस भजन को, समझते चलना चाहिए ताकि और हृदय का भाव जगे। दामोदर रति वर्धन वेशे, राधा रानी के हृदय में ऐसी दिव्य सेवा भाव है कि भगवान दामोदर के चरणों में प्रेम जो रति है ना उसको वर्धन करती है। भगवान श्याम सुंदर भी राधा रानी से पिघल जाते हैं, राधिका नाम क्यों पड़ा, कृष्ण आराधने जो सर्वश्रेष्ठ है, कृष्ण की आराधना में, क्योंकि इस श्लोक में आगे के श्लोक में जो आया राधा रानी का नाम सुखदेव जी ने भागवत में प्रकट नहीं लिया लेकिन रहस्य रूप में लिया, अन्याराधितो नूनम, हमारे आचार्यों ने कहा जैसे आप लोग सभी माताएं लोग प्राय लगाती है मेहंदी, ओके, उसके पत्ते किस कलर के होते हैं, हरे कलर के, लेकिन आप सभी जानते हो कि पत्ता हरे कलर का है लेकिन इसके अंदर क्या छुपा है, लालिमा, यथा प्रियंग पत्रेशु, प्रियंग मतलब ये जो मेहंदी है नीना, उस मेहंदी के पत्तों में तो हरे है लेकिन लालिमा उसको लगाए घिस के तो कौन सा रंग आता है, अरुण, लालिमा आ जाती, मतलब हरे में लाल छुपा है। ऐसे ही भागवत में भी राधा नाम प्रकट नहीं लिया गया लेकिन सीक्रेटली रहा गया है, अन्याराध जो आराधना करे वो राधा, कृष्ण की आराधना सेवा प्रेम में जो मस्त है, तो छुपे रूप में तो लिया गया है क्योंकि दामोदर की रति का वो वर्धन करती है। हरि निकुष्ट, हरि का जो ये घर है उसकी अधेश्वरी है, और वृंदावन विहारी जो श्याम सुंदर है वो भी उसके प्रेम से उनके अधीन हो जाते हैं, इसलिए वृंदा विपिन की भी ईश्वरी है। ऐसा लगता है कि वृषभानु बाबा रूपी ये समुद्र से निकला हुआ चंद्रमा है। वृषभानु उदधि, उदधि मतलब समुद्र।
वृषभानु उदधि नव शशि लेखे,
जैसे पूनम का चांद चंद्रमा से निकलता है ना, अब समुद्र मंथन लीला पढ़िए, चांद कहां से निकला? ऐसे ही राधा रानी किसकी लड़की है?
वृषभानु सुते देवी,
हम गाते हैं ना,
वृषभानु उदति नव शशि लेखे। ललिता सखी गुण रमित विशाखे, करुणा करमयी करुणा भरिते, सनक सनातन वर्णित चरिते। राधे जय जय माधव धरिते, राधे जय जय माधव धरिते, राधे जय जय माधव धरिते।
जय जय श्री राधे। प्रभु कह राय कहे राधा प्रेम सर्व साध्य सा, अपूर अमृत नदी बहे तुमार मुखे अनया राधितो नुनु, राधा कुंडम प्रियम तथा। ये जो शब्द है, इन शब्दों में इतनी शुद्ध शक्ति है कि इनका श्रवण भी आपके करोड़ों जन्मों के पाप को धो देगा। राधा नाम लेते ही कोटि जन्म बाधा मिट जाए, करोड़ों जन्मों की बाधा दुख दरिद्रता समाप्त हो जाएगी। कोई प्रेम से बोल दे एक बार, वृंदावन में इसलिए सर्वत्र क्या होता है, मनुष्य की बात छोड़ो, वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, डार डार अरु पात पात पे श्री राधे राधे हो, डार डार और पन्ने पन्ने पर भी राधा राधा होता है। अरे स्वयं श्याम सुंदर भी तो इसी मंत्र का जप करते हैं, क्या कहा जाए, बड़ा ऊंचा तत्व है। इसलिए शिल प्रभुपाद जी ने समझाया, कृष्ण प्रेम जीवन परिपूर्णता लक्ष्य है ना, तो हम जो दिया है ना गोलोकेरो वृंदावन प्रेम धन गौरांग ने, उस महामंत्र में जो ये हरे है ना, किसको संबोधन करता है? हरे शब्द के क्या अर्थ है? हरति मन इति हरा। और संबोधन में अष्टमी विभक्ति में क्या हो जाता है? हरे। इसलिए हरे मतलब राधा राधे। कभी कभी लोग कहते हैं राधे राधे करो, चले आएंगे बिहारी गाते, लेकिन एक बात है कि हमें राधा की कृपा चाहिए, राधा से ही प्रेम मिलेगा। लेकिन राधा को क्या प्रिय नाम है? कृष्ण। इसलिए कृष्ण कृष्ण बोलने से राधा खुश होती है, राधे राधे कहने से कौन खुश होता है? कृष्ण खुश होते। अभी हमें दोनों को खुश करना है, इसलिए महामंत्र जपना है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम। इसमें दोनों आ गया, हरे शब्द राधा अर्थ कृष्ण तो है ही है, तो महामंत्र बोलने से राधा गिरधारी दोनों प्रसन्न हो जाते हैं। और यही हमारे आचार्यों ने विधि, इसलिए परंपरा के आचार्यों में भजन करेंगे तो कृपा को पाएंगे, सुख से सेफली सेफ रास्ते में आप जाओगे। परंपरा से हटके कहीं इधर कहीं उधर तो कभी भी भटक सकते हो, रास्ता भी भूल सकते हो, और रॉन्ग वे में चले जाओ तो एक्सीडेंट भी हो सकता है। इसलिए एवं परंपरा प्राप्तम, इसलिए जो प्रभुपाद ने दिया है ये सरल सुगम और श्रेष्ठ मार्ग है। हमारे हिंदी समझ में आता है ना, सरल सुगम और बेस्ट, इस कोई कमी छोड़ा, बस हमें समर्पण भाव से साधना करनी। करुणा करुमयी करुणा भरिते, राधा प्रेम ही सार है। एक छोटी लीला 5 मिनट की सुना के समाप्त करेंगे। आप सभी भक्त उठेंगे नहीं, क्योंकि समाप्त करने के बाद कुछ अनाउंस के बाद फिर 5 मिनट कथा कहूंगा। आज अंतिम दिन है और फिर भी किसी को समस्या कष्ट है तो दरवाजा तो प्रायः सभी खुले हैं, कहीं से भी जा सकते हो कोई बंधन नहीं है, लेकिन समय 9:30 तक है तो उसी सीमा में ही रहेंगे। और हम चाहते कि सीनियर भक्त यहाँ कई उपस्थित है, हमारे चंड गोपी प्रभु उपस्थित है, और भी मंदिर के भक्त, हमारे हरिदास प्रभु उपस्थित है, नित्यानंद माधव प्रभु 7 दिनों से बैठकर कथा सुनते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि इन भक्तों के मुख से भी 2-5 मिनट कुछ सुन लिया जाए। हमने तो बहुत आपका सर दुखाया 7 दिन, लेकिन ये प्रेमी भक्तों के आशीर्वाद भी मिले तो अच्छा है ना। तो प्रसाद सबके लिए है और 5 मिनट थोड़ा लेट होगा आज, मान लीजिए 9:30 से 35 या 40 हो जाए तो आप लोग बदला ले लीजिए, प्रसाद ज्यादा ले लीजिए, हम थोड़ी कोई कम है, जितना 5 मिनट लेट किया 10 मिनट उतना प्रसाद ओवर ले सकते हो, ले सकते हो ना। लेकिन बड़ा सुख मिला आप सभी भक्तों के प्रेम आग्रह से पधारते थे अपना समझ के, तो जो मन में आता था बोलते थे और इसके लिए हमने अध्ययन भी किया। अगर नहीं बोलना होता तो हम भी आलस निद्रा के सरदार है, सोते खाते पीते रहते, साधना तो 0 है, लेकिन वैष्णव सेवा आज्ञा में कुछ हमारा भी वाणी उद्धार शुद्धता हो गया। इसके लिए मैं गिरधारी भक्त समाज, गिरधारी कमेटी, यहाँ के हमारे प्रेसिडेंट श्री कमलोचन प्रभु, या उसको साथ देती है कमेटी श्री माधवानंद प्रभु, वनमाली प्रभु, जो भी है हर्ष गोविंद प्रभु, सभी को मैं कोटि धन्यवाद देता हूँ। और हमारे द्वारकानाथ प्रभु, गरुड़ प्रभु, इन लोगों का संकल्प था कि गिरधारी में आप कुछ बाहर इतना बोलते रहते हो, यहाँ गिरधारी के अपने हो कुछ कहते नहीं। मैंने कहा यहाँ तो सब अतिरथी महारथी भरे पड़े हैं, हम जैसे सैनिक का क्या वैल्यू। बोले नहीं नहीं सैनिक भी कभी कभी काम में आता है, कभी कभी आप वो चेस खेलते हो ना तो छोटा पायदल होता है ना, राजा को चेक दे सकता है कभी कभी देता है, हो सकता है कुछ भी। तो भगवान के गुण गाया तो बहुत, फिर मैंने प्रेम प्रार्थना से आज्ञा में हाँ बोल दिया। ऐसे अंदर से ग्लानी हो रहा था कि मैं इसको लायक नहीं, क्योंकि भागवत गीता तो थोड़ा बोल देता, लेकिन प्रभु जी की इच्छा से चैतन्य चरितामृत टॉपिक छाप दिया फिर भी आप भक्तों के अपनेपन से हमने गाया 2-5 जो भी श्लोक स्मरण आया वो, और इसके लिए हम आप सभी भक्तों के ऋणी हैं कि आपने हमें ये मौका अवसर दिया। और कुछ ज्यादा बोल दिया हो तो आप लोग अपना समझकर क्षमा करेंगे और आशीर्वाद रखेंगे कि बस जब तक सांस चले तब तक राधा गिरधारी के गुणों को गाते रहे, और कोई आशा नहीं और कोई इच्छा भी नहीं है। किशोरी जी इतनी करुणामयी है, जयपुर में आप, जयपुर नाम सबने सुना होगा, राधा गोविंद देव, वहां के राजा के खजाने में अध्यक्ष थे जगन्नाथ भट्ट, खजांची, ट्रेजर खजांची थे, कौन नाम क्या था, नाम था जगन्नाथ भट्ट, बड़े सरल स्वभाव के भक्त थे, लेकिन नौकरी भी संभालते थे, खजांची थे तो ऊंची पोस्ट मानी जाती है ना, खजांची मतलब लोन वही दे सकते हैं भाई राज्य में नगर सेठों को भी। उसका विवाह हुआ एक सुकन्या से, सुंदर नारी से, जिसका नाम सौभाग्य से किशोरी था, क्या था, किशोरी। ये सत्य घटना है और आज से 450 साल पूर्व की है, कोई ज्यादा दूरी की नहीं। अब नाम किशोरी रखते हैं लड़कियों का, कई लड़कियों का नाम किशोरी जी हमारे इस्कॉन में भी है। अब किशोरी बड़ी सुंदर सेवा करती थी, वो पतिव्रता थी, सती नारी थी, और सती पत्नी किसी को मतलब वो मिले वो पुरुष भी बड़ा पुण्यवान माना जाता है, क्योंकि सती नारी पति को मति और गति देती है, वरना तो उद्धव गति देती है। सती नारी क्या दे सकती है, मति दे सकती है पति को, नहीं तो फिर सदगति तो जल्दी ही जल्दी प्राप्त होना ही है, इसमें तो कोई दोहरा ही नहीं है। अब हुआ क्या, इतना प्रेम करता था, एक रोग आ गया शरीर में, कब कौन सा रोग पकड़ लेना भरोसा नहीं, इसलिए भजन करना है ना, माला महामंत्र कल नहीं बोलने का, आज भी नहीं, अब भी हम लोग क्या कहते हैं करेंगे कल, और फिर कोई रोग पकड़ लेता है, कोई नुकसान कुछ ये वो, जो 2-5 करते थे वो भी जाएगा। अब ये इतना प्रेम करता था अपनी पत्नी से, वो मर गई ना तो अपने नौकरी का क्या हो रहा था, भक्ति का क्या हो रहा था, व्यवहार व्यवसाय सब छोड़ दिया और पागल की तरह किशोरी किशोरी उसके विरह में शून्य एकम जगत सर्वम हो गया, क्योंकि बहुत प्रेम करती थी उससे। अब सारा मन, क्योंकि उसका मन उसी में था, पत्नी में, प्रेम में, उसके रूप में, और इसलिए किशोरी किशोरी करके पर रोता ही रहता था, रोता ही रहता था, और सारा नौकरी छोड़ दिया, धंधा छोड़ दिया, रोते रोते चलते चलते पागल की तरह घूमते घूमते जयपुर से बरसाने पहुंच गया ब्रजमंडल में। और वहां जाकर भी हाँ किशोरी हे किशोरी बस यही कर रहा था। उसको पता नहीं कहां पहुंच गया श्री जी के धाम में बरसाने में। देखो जितने भी पुरुष हुए ना वो महान बने हैं पत्नी के कारण। क्यों हंस रहे हो आप लोग भाई? नहीं, दुष्टा पत्नी मिले दुष्ट स्वभाव की तो भी पुरुष महान बन जाता है, भगत बन जाता है, और अच्छे स्वभाव की मिले तो भगत बन ही जाता है, मंदिर में साथ देती है, दोनों तरह से महान बनते हैं। हंसी मत, सत्य बात है ये। पुरुष की प्रगति के पीछे इन्हीं का हाथ है, नारी शक्ति का तो इतना बड़ा हाथ है, वो बात अलग है। हंसी मजाक के लिए कुछ भी होता है। एक पुरुष है ना, अपने ससुराल गया। क्यों गया? क्योंकि उसकी पत्नी गई थी वहां, तो महीना हो गया, दो महीना हो गया, आ नहीं रही थी, तो अंदर से ये बड़ा खुश था, लेकिन पड़ोसी संबंधी लोग बोल रहे थे भाई तू क्या हुआ, दोनों में झगड़ा हुआ, लेने क्यों नहीं जाता? इसलिए वो गया ढीले ढीले मन से कि आफत गले वापस लाऊ समाज के डर से। अंदर से तो खुश था कि उधर ही रहे तो अच्छा है, लेकिन जैसे वहां पहुंचा ना ससुराल में, तो सास भी बड़ी खुश हो गई, ये भी बड़ी खुश हो गई, जमाई आया है भाई, आनंद महोत्सव हो गया। लेकिन सौभाग्य से उसके गुरु जी वहां आए थे ससुराल में, और गुरु जी आए तो सत्संग तो होता ही है, तो सत्संग चला, तो जमाई भी बैठा सत्संग में, सास भी बैठी, बहू तो बैठी थी उसकी पत्नी। और ये साधु ने पूछा स्वर्ग कौन कौन जाना चाहता है स्वर्ग? तो सासू ने भी हाथ उठाया, मैं जाना चाहती हूं। बहू ने भी हाथ उठाया, मैं। जमाई ने हाथ ही नहीं उठाया। बोले तुम स्वर्ग में नहीं जाना चाहते? बोले ये दोनों जाएगी तो मेरे लिए तो यही स्वर्ग हो जाएगा। अगर ये दोनों स्वर्ग में जाए तो मेरे लिए तो पृथ्वी में ही स्वर्ग हो जाए, क्या जरूरत है जाने की? कोई भी व्यक्ति महान बनता है उसके पीछे कुछ कारण होता है। किशोरी 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 करके रो रहा है, पहुंच गया गर्भ गह्वर वन की तलेटी में, और हमारी राधा रानी नित्य लीला वहां अदृश्य प्रकाश तो करती है, ललिता विशाखेश के साथ घूमती हुई वहां से निकली, और शब्द गया कान में किशोरी किशोरी, अपनी पत्नी के लिए पागल बन के रो रहा था ये जगन्नाथ भट्ट। अरे ललिता, ये हमारा नाम कौन पुकार रहा है इतना प्रेम से? बोले स्वामिनी जी आपका नाम नहीं पुकार रहा है, वो पागल है अपनी पत्नी का नाम पुकार रहा है। अरे किशोरी तो हमारा नाम है। राधा रानी ने क्या कहा? लंदन में इस्कॉन में प्रभुपाद जी ने मंदिर बनाया, क्या नाम है? जय किशोर किशोरी। एक जगह लंदनेश्वर भी है लेकिन एक जगह क्या नाम है? किशोर, नित्य किशोर है ना भगवान, और राधा रानी भी नित्य किशोरी है। बोले किशोरी तो हमारा नाम है। बोले नहीं, आपका नाम नहीं, किशोरी का अर्थ होता है अवस्था, एक है किशोर अवस्था, बालपन पौगंड, तो किसी को भी किशोरी कहते हैं, और कोई कोई नाम रख देता है, आपका नहीं है, चलो स्वामिनी जी हम अपनी लीला में आगे बढ़े। बोले नहीं, कोई हमें प्रेम से पुकारे और हम आगे बढ़ नहीं सकते। और राधा रानी जो किशोरी किशोरी करके रो रहा था उसके पास गई, और उसके पास जाकर कहती है हे प्रेमी क्यों रो रहे हो, क्यों पुकार रहे हो? देखो ये किशोरी तुम्हारे सामने खड़ी है करुणा करने के लिए। और ऐसा करके अपने हाथ में जो पुष्प था, जैसे उसके सर पर नीचे दिया प्रसाद में, उस पुष्प को छूते ही राधा रानी का दिव्य दर्शन पा गया वो जगन्नाथ, दिव्य प्रकाश तेज। देखो उसका नाम नहीं बोला, लेकिन करुणा करमई करुणा भरी ते, ये इतनी करुणामयी है कि कोई प्रेम से उसको पुकारे रह नहीं सकती। अब उसको दिव्य दर्शन हो गया, प्रेमी बन गया। वहां पर वंशी अली करके एक महात्मा थे, उनका वो शिष्य बन गया। अली समझते, अली मतलब सखी होता है। दिव्यम वृंदारण्य कल्पतरु मात्रम श्रीमद रत्नागार सिंहासनस्थो श्रीमद रत्नागार सिंहासन उसको फिर क्या है? हाँ, श्रीमद राधा श्रील गोविंद देवो प्रेष्टा अली भी, अली मतलब सखी, प्रेष्टा अली भी सेव्य मानो स्मरामी, अली मतलब सखी बन गया उस परंपरा में। और उन्होंने एक ग्रंथ लिखा है जिसमें राधा रानी के दिव्य सुंदर मधुर स्वभाव का रूप का वर्णन किया है। ऐसी बहुत, मैं तो शास्त्रों में तो बहुत कथा है पद्म पुराण आदि में, लेकिन ये प्रत्यक्ष कलयुग में भी किशोरी जी इतनी करुणामयी है कि कोई प्रेम से भगवान कृष्ण की सेवा करे, उनका नाम ले तो राधा रानी ज्यादा पसंद होती है। कोई कृष्ण की सेवा करे तो राधा रानी ज्यादा, क्योंकि राधा रानी स्वयं क्या करती है? कृष्ण की सेवा। इसीलिए भक्तों, ये राधा अष्टमी आ रहा है, इसलिए इस्कॉन में हम ब्रह्म उत्सव मना रहे हैं राधा गिरधारी में। और राधा गिरधारी की पालकी उत्सव होगा, यज्ञ होगा, उनका अभिषेक होगा। कृष्ण जन्माष्टमी से भी बढ़कर भगवान खुश होते हैं ना, प्रसन्न होते हैं ना गिरधारी, तो राधा अष्टमी के दिन, जन्माष्टमी के दिन भगवान प्रसन्न होते उतना नहीं, क्योंकि अपनी प्रिया के जन्मदिन पर तो और ये मुस्कुराते हैं, और उस दिन जो कोई अभिषेक करता है ना उस पर ज्यादा प्रसन्न होते हैं। राधाष्टमी के दिन भी अभिषेक सेवा है हमारे मंदिर में, यज्ञ भी है, और ब्रह्मोत्सव में तन मन धन से राधा रानी की गिरधारी की सेवा में आप सभी भक्त जुड़िए। ये दास का निवेदन है। ये कथा करने के पीछे उद्देश्य यही था कि हम सबकी राधा गिरधारी के प्रति सेवा भाव बढ़े, उत्साह बढ़े, आपस में भक्तों में प्रेम बढ़े, और कृष्ण प्रेम भक्ति करके हम प्रभुपाद को प्रसन्न कर सके, गुरु को प्रसन्न कर सके। इस आशय से ये यज्ञ हुआ। दो पांच शब्द आपके सामने रखे गए, फिर भी जीव है, मनुष्य है, जीव है, अज्ञान है, कुछ तो त्रुटि गलती होता है, लेकिन आप सभी भक्त अपना समझ के माफ करेंगे। और आज भी मैं धन्यवाद देता हूँ सभी भक्तों को, विशेषकर हमारे नित्यन माधव प्रभु को, उनका भी भाव था हृदय से, आज उन्हीं की ओर से महाप्रसाद भी है, तो धन्यवाद है इनको भी। जब बोलो तब गिरधारी की सेवा के लिए इनका जीवन है। ऐसे भक्तों को हम देखते हैं तो हृदय में बड़ा आनंद होता है, मस्तक झुकता है, प्रणाम करते नहीं बाहर से, लेकिन दिल 10 बार, 1000 बार, 100 बार प्रणाम करने को मन करता है। बस हमें भी गिरधारी के सेवक बनना। तो आप सभी लोग अगर थोड़ा भी इस कथा से प्रसन्न हो तो दक्षिणा में यही दीजिए कि आप सभी गिरधारी के शुद्ध सेवक भक्त बन जाइए। कुछ भी हो जाए गिरधारी को छोड़ना नहीं है, उनका नाम जपना है, उनकी भक्ति करना है। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच।